उसको कोई ना देखे तब भी रिया है वो। ऐसा मौका आ सकता है कि अकेला पढ़ रहा है नमाज, मस्जिद में आया कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी नियत यह है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई आके मुझे देखे, और मैं तिलावत कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे देखे। तो बाज मरतबे यानी कितनी अजीब चीज है कि इंसान तन्हा भी नमाज पढ़ रहा है फिर भी दिखावा है, कि उसकी नियत यह है कि मुझे कोई देख ले। अब ये नियत उसमें शामिल है तो भी दिखावा है, और करोड़ों का लाखों का मजमा है, करोड़ों आदमी उसको देख रहे हैं, लेकिन उसकी नियत दिखाने की नहीं है, ये इखलास है। कैसी अजीब बात है। अब यही तो वो चीज है, बगैर शेख के तो नहीं आ पा ये बात है कि इंसान कैसे सीखेगा। ये बात है सोहबतों से आदमी, एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है और नियत क्या है कि मुझे कोई देख ले, अब वो दिखाना चाहता है, अब इसको कोई नहीं देखता, तो ये भी रियाकार है, इसके अंदर इखलास नहीं है। और एक आदमी इबादत कर रहा है, कोई काम कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है उसको, लेकिन उसकी नियत नहीं है दिखाने की, तो बस अल्लाह मुझे देखे, अल्लाह सारी दुनिया देखे, तो ये रिया नहीं है। सुभान अल्लाह, कैसी अजीब बात है। इसलिए तन्हाई में भी, तन्हा अगर इबादत कर रहा है तो भी नियत ना हो कि कोई देखे, और अगर नियत नहीं है देखने दिखाने की, इबादत कर रहा है फिर भले देख ले कोई आ जाए। लेकिन हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस वक्त में भी हिफाजत करें, क्योंकि रिया ऐसी चीज है, कभी इबादत से पहले आती है, शुरू से नियत होती है कि मुझे कोई देखे, नंबर एक। कभी शुरू में अच्छी नियत होती है, इखलास होता है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, कोई आ गया, अब उस वक्त में नियत आ गई कि यार अब ये मुझे देखे, अब उसने देख लिया चल मैं दिखाऊं उसको कैसा है। यानी पहले नमाज पढ़ रहा था तो तीन मरतबा पढ़ रहा था सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ ले, और जब किसी ने देखा अब शुरू कर दिया सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, फर्क आया ना। क्यों आया? दिखाने के लिए। दादा जैसे पहले पढ़ रहा था अब भी पढ़ता ना, पहले जैसे पढ़ रहा था अब भी पढ़ता ना, तो फिर अगर अवल में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अब इसलिए फर्क ही क्या है कि ताकि वो देख ले कि देखो मैं बात कर रहा हूं। दादा शुरू में तो नियत नहीं थी दिखाने की, लेकिन दरमियान में आ गई, दो वक्त हो गए। और फरमाया तीसरा वक्त ये होता है कि अमल करने के बाद, यानी अमल कर लिया, किसी ने देखा ही नहीं, इसने किसी ने देखा ना, इसने दिखाने की नियत की, लेकिन अमल करने के बाद कोई आ गया, अब दिखा रहे हैं कैसे, अल्लाह ताला का बड़ा फसल हुआ आज तो, रात 3 बजे आंख खुल गई, बहुत रोना नसीब हो गया, कुछ कुछ सुर्खी आपको भी नजर आ रही होगी, खाम खब है बस। और जो ये अजीब दिखावा ऐसी चीज है, ये कोई वजह नहीं होगी, खाम खामे शुरू हो जाएगा। दिखावा ऐसी चीज है कि कोई वजह नहीं होगी कि अगला कुछ कहे या कहे, क्योंकि मरज है ना अंदर, जिसको कीड़ा बोलते, अंदर मरज मौजूद है, इसलिए खाम खामे शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रिया दिखावा 3 वक्तों में होता है, ये इस जगह पर ये तहकीक नहीं है ना, वरना हजरत ही की बात है, हमारे पास और है ही क्या हजरत के माल के अलावा। फरमाया एक तो अमल को शुरू करने से पहले होता है, कि अमल शुरू कर रहा है अब, नियत ये है कि लोग मुझे अब दिखाना चाहता हूं, मैं पता चले मैं बुजुर्गों का सोहबत याफ्ता हूं, कितना बड़ा आलिम हूं, कितना बड़ा अब उर्दू जो उर्दू वो सीखे वो थोड़ी बोल सकता है वो कितना बड़ा आलिम हूं मैं, कितना बड़ा इबादत गुजारू मैं। तो अब वो जो है उसने नियत की कि पता चले कि जी मैं कैसा हूं, अब पता चले लोगों को। तो और इसमें एक बात याद रखिएगा, एक चीज और भी है, ये दिखावा क्यों है, اس لیے کہ اس کی نظر مخلوق پر آ گئی, اللہ سے ہٹ گئی, اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ دکھاوا ہے. لیکن اگر ایک شخص مثلا استاد ہے, مثلا شیخ ہے, وہ ایک عبادت کر رہا ہے اور عبادت میں اب اس کی نیت یہ ہے کہ میرا مرید اور میرا شاگرد دیکھے کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے, اب یہاں تربیت اور سکھانا مقصود ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میری واہ واہ کرے, عمل سیکھے, عمل کو سکھانا مقصود ہے. تو استاذ اور شیخ, لیکن ہر آدمی نہیں, لہذا اس استاذ کا وہ دکھانا, اب نیت ہے اس کی دکھانے کی کہ وہ دکھا رہا ہے. مثلا مسجد سے باہر نکلا, آرام آرام سے جوتی پر نکال کے پاؤں اس پہ رکھ رہا ہے, اور پھر الٹا پاؤں جوتی پہ رکھا, سیدھا پاؤں جوتی میں داخل کیا, زور سے دعا پڑھ رہا ہے اور دکھا رہا ہے. وہ حقیقت میں وہ دکھا نہیں رہا, سکھا رہا ہے. اس کا دکھانا سکھانا ہے. تو اب یہاں پر بھی بظاہر دکھانا ہے, حقیقت میں سکھانا ہے. تو سکھانا یہ بھی ریا اور دکھاوا نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں تو بزرگان دین نے فرمایا, یہ محقق صوفی حضرات نے یہ بات فرمائی کہ ریا الشیخ افضل من اخلاص المریدین. وہاں تو دیکھو مفرد ہے یا جمع ہے, ریا الشیخ افضل من اخلاص المریدین. کہ شیخ کا دکھاوا اور ریا مریدین کے اخلاص سے بہتر ہے. لہذا وہ بظاہر دکھا رہا ہے لیکن اس کی نیت میں سکھانا ہے, دکھانا نہیں. عملاً دکھا رہا ہے, نیتاً سکھا رہا ہے. لہذا اس کا وہ سکھانا, اس کا وہ دکھانا سکھانا ہے. لہذا اس کا وہ سکھانا اللہ کے لیے, مقصود یہ تو نہیں نا بھائی میری واہ واہ اور تعریف ہو, مقصد یہ نہیں ہے کہ میری واہ واہ اور تعریف ہو, بلکہ مقصد یہ ہے کہ شیخ وہ عمل مرید کو سکھائے. جیسے اگر باپ بھی کرتا ہے بیٹے کو, تو باپ کا بیٹے کو سکھانا یہ دکھاوا نہیں ہے کہ باپ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسے کرتے ہیں, دیکھو مجھے, میں دکھا رہا ہوں تمہیں, وہ دکھا رہا ہے. کوئی اس کو مر کہے گا نہیں بھائی, وہ تو باپ بچے کو سکھا رہا ہے. تو دکھانا برائے سکھانا, دکھانا برائے سکھانا, یہ بھی اخلاص ہے کہ بچے کو سکھا رہے, دیکھو تو بچہ دیکھے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے, باپ دکھائے گا نہیں تو سکھائے گا کیسے. تو اب پتہ چلا دیکھو نیت ہی کچھ اور ہے نا, باپ اپنی بندگی تو نہیں سکھا رہا نا, اللہ کی بندگی سکھا رہا ہے. مرید اور شیخ کو, شیخ اور استاذ کو بھی یہی سمجھو کہ وہ بچہ ہے, مرید اور شاگرد تو بچہ ہے, تو وہ باپ ہے, وہ دکھا رہا ہے اس لیے کہ سکھا رہا ہے. تو اس کا سکھانا دکھانا برائے سکھانا ہے, اور وہ سکھا کیوں رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, ایسے کرے. تو یہ بھی اخلاص ہے, یہ دکھانا نہیں کرائے گا. تو ایک عمل, اب وہ چاہے استاد شروع سے ایسا کر رہا ہے, استاد چاہے شروع سے ایسا کر رہا ہے, اس نے نیت کی کہ میں اس کو دکھاؤں, لیکن حقیقت میں اس کی نیت جو دکھانے کی ہے وہ اللہ کے لیے, اور وہ جو ریا دکھاوا میں دکھانا ہے نا, وہ اپنے لیے, مخلوق کے لیے, کہ مخلوق دیکھے میری واہ واہ کرے, میری تعریف کرے, یہ ہے بس. یعنی عبادت کے ذریعے سے وہ دنیا لے رہا ہے, تھوڑے دن کی واہ واہ یہ لے رہا ہے, اور اللہ کے لیے جو دکھا رہا ہے وہ بھی دکھا رہا ہے, لیکن سکھا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا رہا ہے. دیکھیے, اب باپ کو ہوتا ہے کہ بیٹا میری واہ واہ کر, باپ کو تو ہوتا ہے یہ سیکھے بس, ایسی نیت خالص ہوتی ہے اس کی. استاد اور مرید کا, استاذ کا اور شیخ کا یہی حال ہوتا ہے کہ مرید کو اور شاگرد کو جو دکھا رہا ہے اس لیے کہ وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ ایسے سیکھو, ایسے عمل کرو, اس عمل کو ایسے بجانا, اللہ تعالی کی بندگی ایسے کرو. تو یہ دکھانا اس کا برائے سکھانا ہے, जो कि आयन इखलास है। दादा अमल से पहले आया कि जी लोग मुझे देखें, अब दिखाने के लिए अमल कर रहा है। दिखाने के लिए अमल कर रहा है, ये अमल के शुरू करने से पहले। अब देखिए ना कि इमाम मस्जिद है, मौलवी वली मोहम्मद को दिख के आ रहा है। अब एक इमाम मस्जिद है, अब वो इमाम जो है मुरब्बी होता है हकीकत में। इमाम का और मुक्तदी का जो रिश्ता होता है वो मुरब्बी और मुरब्बा का रिश्ता होता है। इमाम का काम है तरबियत करना, इसलिए इमाम का एक मकाम होता है लोगों की नजर में। आज भी मकाम है वो, कितने कानून पास कर दे लेकिन इमाम की लोगों के दिल में इज्जत है। तो जब अल्लाह ताला ने इमाम को एक वकार दिया, एक मनसब अता फरमाया, तो फिर एक मनसब की कोई कुछ जिम्मेदारी होती है। इस पर मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया सुनावा याद आया। हजरत सुनाया करते थे अक्सर, फरमाया कि अंग्रेज के जमाने में डिप्टी कलेक्टर था। ऐसे मत बैठो, जरा आजी से बैठो। अंग्रेज के जमाने में एक डिप्टी कलेक्टर था, वो छुट्टी पे अपने गांव जा रहा था इलाके में। तो बड़ा होता था तो सरकार ने छुट्टी भी दी और उसको साथ में सफर के लिए मुलाजिम दिया, खादिम के तौर पे, कि चाय मंगवानी हो इससे मंगवाना, दूसरे काम करना इससे करना। और साथ में एक और भी था, तो वो जिसको कहते हैं एजेंसी का आदमी। एक स्टेशन आया, अब इसकी पुरानी आदतें थी, स्टेशन पर खड़े होकर जो है वो जनाब चाट खा रहे, वहां चाय पी रहे, जैसे होता है पुरानी आदत। जब वो छुट्टी से वापस आया तो हुकूमत ने उसको बरतरफ कर दिया, और इस बात पर कि जब तुम्हें खादिम दिया गया था कि तुम काम इससे लो, तुम खुद क्यों खड़े होकर वहां चने खा रहे थे, तुम्हें खाना था तुम मंगवाते, लेकिन ओहदे का ख्याल करते, अपने अपने मनसब का ख्याल करते। ये तकब्बुर नहीं है, याद रखना, अपने ओहदे और मनसब का ख्याल रखना ये तकब्बुर नहीं है। तो अंग्रेज ने उसको इस बात पर निकाल दिया कि तुमने चने खड़े होकर क्यों खाए वहां पे स्टेशन पे, जब तुम्हें खादिम दिया गया था उससे काम क्यों नहीं लिया। तो पता चला मनसब और ओहदे की भी रियायत थी। हालांकि तो इससे पता चला जो हजरत फरमा करते थे, मुक्तदा के लिए बाज़े जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। मुक्तदा के लिए हकीम उम्मत की यह बात है कि बाज़े जायज काम भी उसके लिए नाजायज होते हैं, मुक्तदा के लिए जिससे लोग दीन सीखते। इसी तरह इमाम वो मुक्तदा है, उसकी एक दीनी मनसब होता है। लोगों के जहन में फरिश्ता तो नहीं, फरिश्तों जैसा होता है वो, लोगों के जहन में होता है। अगर वो कोई बेवसूली का काम करे फिर उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मसलन सड़क पर खड़े होकर खुजलियां करना शुरू कर दे, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। अब इंसानी जरूरत, वो क्या जरूरत है, तो जरूरत पूरी करने का भी कोई तरीका है कि नहीं है। इस्तिंजा करना एक जरूरत है, शरीयत ने नहीं सिखाया कि ओठ में खड़े होकर करो, ओठ में होकर जाओ, बैठ के करो, ओठ में जाओ, यानी कहीं छुप के करो, कितना यानी सिखाया। हालांकि अबू कहते नहीं जी जरूरत है, भाई जरूरत है तो जरूरत का तरीका भी सिखाया गया कि जरूरत को कैसे पूरा करना है। शरीर सिखाने के कुर्ता लिबास को पहनना है तो दाएं तरफ से पहले पहनो, उतारो तो बाएं तरफ से पहले उतारो, जरूरत है। शरीर एक तरीका दिया, उस तरीके की बरकत है, वो हमारी जरूरत भी इबादत बन गई, यही तो बयात है। तो इमाम का एक मनसब होता है, और इमाम का जो मनसब है वो मुरब्बी का मनसब है कि वो तरबियत करने वाला है। इसलिए वो मेरे शेख एक बात फरमाया करते थे, उलमा का खिताब था, उलमा से फरमाते थे लोग तुम्हारी डिग्री नहीं देखेंगे, जो तुमने मिश्कात में कितने नंबर लिए, नूरुल अनवार में कितने नंबर लिए, हुसामी में कितने लिए, मुख्तसर में क्या किया, मुमताज आए क्या, उनको इसे परवाह नहीं है कोई। किसी मौलवी की डिग्री आज तक किसी मुख्तदी ने नहीं देखी, उसको कोई परवाह नहीं। वो तो सीधी सीधी मौलवी साहब की शलवार देखता है कि टखनों से ऊपर है कि नहीं है, वो तो मौलवी साहब की मूछे देखता है कि इतनी बड़ी बड़ी मूछे है, वो तो मौलवी साहब की नमाज देखता है कि कहते हैं कि नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ो, वो नमाज खुद खिलाफ है सुन्नत पढ़ते हैं। आम आदमी है लेकिन वो भी जानता है सब कुछ, तो बुद्धू थोड़ी होते लोग। वो देखते हैं मौलवी साहब जो है वो खाना कैसे खा रहे हैं, प्लेट साफ नहीं कर रहे, एक एक चीज नोट करते हैं लोग। मैं पुराने मोहल्ले में रहता था ना, जब यहाँ इस मस्जिद जाने से पहले तो एक ताल्लुक वाले थे, तो मेरे घर थोड़े से फासले पर था, मैं मस्जिद पहुंचता था खैर 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले भी जाऊं या आयन वक्त पर भी पहुंचू, तो एक साहब मुझसे ताल्लुक, उन्होंने एक दिन मुझे कहने लगे कई महीनों बाद, कहने लगे तुम्हारी एक अजीब बात मैंने नोट की, जब तुम मस्जिद आते हो तो चाहे कब पहले आओ देर से आओ तुम्हें पहले सबको जगह मिल जाती है। मैं इतना यानी उसकी इस बात पर तो वो नहीं, मुझे हैरानगी इतनी कि कितना लोग नोट करते हैं बातों को, इस बात पर मुझे हैरानगी। तो मैंने कहा जिस शख्स ने मेरी इस हरकत को इतना नोट किया होगा कि हर नमाज में उसको पहली सफ में जगह मिल जाती है, जिसने इतना नोट किया होगा वो लोग और लोग भी क्या क्या बातों को नोट करते होंगे। तो मुक्तदी की एक एक चीज देखी, मुक्तदी एक एक चीज देखते हैं इमाम की, वो जो शिकायत करते हैं सही तो शिकायत करते हैं। अब जिसकी जिस शख्स के मनसब की वजह से और उसके मर्तबे की वजह से लोगों के दिल में एक इज्जत है, अब वही मनसब वाला शख्स उसके घर में मांगने के लिए चला जाए तो वो जो इज्जत है ना वो खत्म हो जाती है। कितनी बड़ी पता है इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। तो उसका काम है वो मुरब्बी, वो बहसियत मुरब्बी की है, इमाम इमाम की हैसियत मुरब्बी की है, वो लोगों की तरबियत करे, उनको नमाजें सिखाए, उनको दीनी बातें सिखाए और खुसूसन अपने अमल से ऐसा करे। जैसे मैं हमारे यहां हालांकि तरीका यह है कि जब इंसान नमाज से कबल की सुन्नतें पढ़े तो सुतून के पीछे पढ़े या एक तरफ के होके पढ़े ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो, आने वालों को भी तकलीफ ना हो, और अगर नमाज का वक्त हो जाए अब क्या होता है। इसलिए मैं तो सीधे कोई नमाज पढ़ रहा हूं ना पीछे सुन्नतें तो सफ बंदी करने में आ जाओ, उसके सामने गुजरना भी जायज है क्योंकि उसकी गलती है, बिल्कुल गुजरो उसके सामने ताकि उसको एहसास हो तुमने गलत काम किया, तुम गलत जगह क्यों खड़े हो। इसलिए आदमी नमाज के बाद की भी सुन्नतें पढ़े तो जिसके आगे दूसरे लोग हो उसको तवील नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर नफिल पढ़ने तो एक तरफ होके पढ़े फिर भले सूर्य बकरा शुरू कर दे, लेकिन अपनी नमाज की जैसे किसी और को तकलीफ ना दे कि भाई अगला उसकी क्या जरूरत है, वह इंसान है दो सुन्नत पढ़ के वो जा सकता है, कोई जरूरी है कि उसको मुकय्यद करना और महबूस करना, ये तो जुल्म है और ये सूफी को गुनाह मिलेगा जो जिसकी नमाज की जैसे दूसरे को तकलीफ हो रही है, ये सूफी साहब को गुनाह मिलेगा। हाँ एक तरफ को हो जाए फिर बोल ले लंबी लंबी नमाजें पढ़े, कोई मना नहीं करता, लेकिन अपनी वजह से किसी को महबूस ना करे कि वो नमाज पढ़ रहा है और लंबी नमाजें शुरू कर दी अब वो और वो अगला बेचारा इंतजार में बैठा है। और इसी तरह से बेजगह बेमौका जगह पर सुन्नतें पढ़ना नमाज से कबल की या नमाज के बाद की कि जिसके वजह से लोगों को गुजरने में उसमें तकलीफ हो तो एक कोने में पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तुमने भी यहां पढ़ी, तुमको देखा देगी दूसरे में भी वहां पढ़ी, जबकि जगह ही नहीं थी पढ़ने की, नमाज तैयार है और ऐन मौके पर यहां आगे सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दी। एक ने गलत काम किया उसकी देखा देखी दूसरे ने भी गलत काम किया, होना क्या चाहिए, कोने में एक तरफ को जाए, एक तरफ को पड़े, ताकि कोई रुकावट ना हो। ये छोटी छोटी सी चीजें जिसका थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मुरब्बी जो इमाम है उसका भी है, लगभग अगर वो दिखाने के लिए काम करेगा तो उसका दिखाना दिखाना नहीं कहलाएगा, रिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि इमाम का तो काम ही है सिखाना। हाँ, अगर वो ये नियत करेगी ये सीखेंगे, फिर मेरे मुर्गे मेरे बकरे छतरे शुरू हो जाएंगे और कोई खाना लेके आएगा, कोई जोड़ा वोड़ा बना देगा, तो फिर ये नियत अच्छी नहीं है। अल्लाह पे नजर रखे, अल्लाह पे नजर रखे, ऐसा करें। याद आया कि हजरत वाला रहमतुल्लाह सुनाया था कि एक सिंध में हजरत के एक दोस्त थे, मैं हजरत से ताल्लुक था, आलिम, उनका वाकया सुनाते थे कि एक नौजवान को देखा कि रेलगाड़ी की पटरी पर, पटरी रेल की पटरी पर खुदकुशी के लिए बैठा है, क्योंकि रेलगाड़ी का उसूल है, रेलगाड़ी का उसूल है कि ब्रेक नहीं लगाना। ये रेलगाड़ी का उसूल है। ऐसे एक सिख भी खुदकुशी के लिए बैठा हुआ था, तो आदमी गुजरा कह रहे कैसे बैठे हो क्या खुदकुशी करने के लिए, तंग आ गया हूं मैं, खुशन अपनी बीवी से। तो उन्होंने देखा एक टोकरी लेकर कहा ये क्या है, इसमें नाश्ता है खाने पीने का, कहा ये क्यों है, तो खुदकुशी करा तुझे खाने पीने की आदत है। उसने कहा अगर ट्रेन लेट हो गई तो नाश्ता तेरा बाप कराएगा। तो वो नौजवान खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, तो मौलाना देख लिया उसको, पकड़ लिया, फरमाया भाई क्या बात है। उसने कहा हजरत मैंने, उस जमाने की बात है जब मैट्रिक पे भी बड़ी अच्छी मुलाजमतें मिल जाती थी, ऐसी मैट्रिक पे भी बड़ी अच्छी अच्छी मुलाजमतें मिल जाती थी, क्योंकि मैट्रिक है। तो फरमाया कि भाई क्या बात है, कहा तंग आ गया हूं मैट्रिक के इतने अच्छे नंबरों से, लेकिन बस फाके हो रहे हैं और परेशान, बस मैं तंग आके परेशान होकर खुदकुशी कर रहा हूं। समझाया, फरमाया अच्छा आओ मेरे साथ आओ, तुम्हें खाने का मसला, चलो खिलाएंगे, जो हम खाएंगे तुझे खिलाएंगे। अपने साथ रखा, उसको कुरान पाक सिखाया, पढ़ा लिखा था कुरान पाक सिखाया, अजान देना सिखाई, नमाज पढ़ाना सिखाई, नमाज के मसाइल मसाइल सब तहारत सिखा दी। दो तीन महीने रखा, हमें आप जा जो मस्जिद नजर आया ना उसकी सफाई फाई शुरू कर दे और वहां अजान दे, नमाज पढ़ा बस, लेकिन देख किसी से कुछ मांगना मत, किसी से कुछ मांगना मत, कोई दे दे तो इनकार ना करना, लेकिन मांगना मत किसी से। कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद वो चला गया, एक मस्जिद नजर आई और चला, उसके बाद माना की मुलाकात के लिए आया शुक्रिया अदा करने के लिए। पूछे क्या बात है, कहा जब आपके गया तो एक मस्जिद नजर आई, मैंने वीरान थी, बेआबाद थी, उसकी मैंने सफाई वफाई की, अजान देना शुरू की, कोई आया नहीं, कई रोज ऐसे गुजर गए बस चने पे और ऐसे पत्तों पे गुजारा कर रहा था। फिर एक नमाजी दो नमाजी ऐसे ऐसा आना शुरू हुए, किसने खाना ला दिया, अब इतना खाना आने लगा कि ढूंढ के लाना पड़ता है कोई मुसाफिर, किसी को कहते भाई मैं खाना खा लू, अल्लाह ताला इतना दे रहा। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दीन की बरकत, लेकिन फरमाया लेकिन मांगना मत, ये चीज अल्लाह को बहुत बुरी लगती है, पर ना पसंद है। तुम मखलूक से ना मांगो, हमसे मांगो, किसी मखलूक से मत मांगो, बस हमसे मांगो, थोड़े देर की तकलीफें उठा लो, बर्दाश्त कर लो, सब मिलेगा, लेकिन किसी मखलूक से ना मांगो। तो रिया दिखावा अमल शुरू करने से पहले भी होता है, कि इंसान अमल शुरू कर रहा है, नियत है कि दिखाए, अगरचे तन्हा नमाज पढ़ो, तन्हा इबादत करो, कोई ना हो, इस इंतजार में कोई आए मुझे देखे तो नियत दिखाने की शुरू सही है इसलिए दिखावा है। और अगर नियत नहीं है दिखाने की, बस अपनी इबादत है उसका मामूल है वो कर रहा है, अब लाखों लोग देख ले उसको, तो ये रिया और दिखावा नहीं है। फरमाया एक तो होता है अमल शुरू करने से पहले, दूसरा रिया दिखावा का वक्त होता है अमल शुरू करने के बाद दरमियान में। कोई नियत नहीं है, कोई नियत नहीं है कि मैं किसी को दिखाऊं। अमल शुरू किया, कोई आ गया, पहले पढ़ रहा था 3 बता सुबह रब्बिल अज़ीम, अब 7 दफा शुरू कर दिया, क्यों? ताकि उसको पता चले मैं बात बुला रहा हूं, है ना। अगर ये अब भी 3 मरतबा पढ़ता रहता देखता देखना तो ये रियाकार ना होता। लेकिन 3 को 5 से बदल दिया या 7 से बदल दिया और फिर प्रेशर भी लगा दिया, सुभाना रब्बियल अज़ीम, देखो कितने तड़पते हुए दिल से कैसे पढ़ रहे हैं 10। तो ये क्या है, यह है रिया दिखावा। हाँ एक बात और भी है, एक आदमी तन्हाई में मसलन पानी पी रहा है खड़े होके, इतने में कोई आ गया बैठ गया फौरन उसको दिखाने के लिए, ये भी रियाकार है। क्यों? मखलूक के खौफ से कर रहा है, तन्हाई में खड़े होके कहा, जिसने देखा फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ के जोर से बिस्मिल्लाह बैठ गया। तो देखो ना, इसने अपने अपने अमल को तब्दील किया मखलूक की वजह से, खालिक का खौफ नहीं है इसके दिल में कि मैं खिलाफ सुन्नत काम कर रहा हूं, मखलूक को देख के सुन्नत पे आ गया, ये भी रियाकार हुआ कि नहीं, ये भी रियाकार। तो अमल दरमियान में भी किसी के देख लेने के उससे कि देखेगा तो अमल को तब्दील कर दिया या उसमें जान डाल दी, जान डाल दी, 5 से 7 दफा हो गई, लोग देखें बाजे देखते भी रहते हैं, देख रहे हैं मुझे नहीं देख रहे, ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, ये रियाकार। और तीसरा अमल यह है कि वो अमल कर लिया, किसी ने न उसकी दिखाने की नियत, न किसी ने उसे देखा न दिखाने की नियत, अब ये अमल वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है, लेकिन बस अब बताने का होगा, क्या पता तो चले कि हजरत साहब का मकाम तो पता चले ना, क्या मकाम है, कहा बस मैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानियों में डूबा हुआ हूं, आज ही देख लो 3 बजे आंख खुल गई, इतना रोना नसीब हुआ, ओ अल्लाह अल्लाह, पूरी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगी मैंने, देखो आंखों की सुर्खी भी कुछ कुछ पता चल रही होगी, और ये नजला ऐसे नहीं हुआ बस वो रात रोने से जरा आंसू है, अब तो ठीक थी तबीयत। इसलिए बाजों को शौक ही होता है, बस जहां बैठा अपना हाथ शुरू कर दिया, तबलीग शुरू कर दी कि मैं ऐसा, और अपनी कहानियां शुरू कर दी, ये भी दिखावा है। वो जो अमल छुपके किया था इखलास से किया था, अभी मखलूक को बता रहे, तो ये भी रिया दिखावा। एक साहब को इसी तरह आदत थी कि कोई चीज हो बस मिलो बताए, मसलन कपड़े पहने, ये भी बीमारी है, कपड़े पहने तो पता चले जी हमने नए कपड़े पहने, चश्मा तब्दील किया तो पता, किसी तरह बताना चाहते हैं कि मोबाइल लिया तो पलट पलट के खाम का देख के हम जेब से निकालेंगे और देखेंगे ऐसे ही करके, तो पूछे कौन सा, हाँ नया लिया है मैंने, तो इस तरह दिखाने की आदत तो कि किसी बहाने से बताएं कि मैं खुड़क होती है, कीड़ा होता है अंदर पेट में, घोड़ हो रही थी कि मैं किस तरह बताऊं कि ये मेरी चीज नहीं है, नई चीज खरीदी है मैंने। ऐसे ही एक साहब को बीमारी थी तो बाजार के एक चड्डी पसंद आ गई, अब वो चड्डी ले ली, अब दिखाए कैसे, बुखार चढ़ गया, अभी भी परेशान है कि अच्छा बुला दे, तुझे बुखार चढ़ क्यों गया, कहा एक फिक्र की वजह से, क्या फिक्र है, कहा ये मैंने चड्डी खरीदी है इसको दिखाऊं कैसे, बीवी ने कहा इसमें क्या परेशानी की बात है, अरे तू मुझे पहले बता देता मैं तुझे तरकीब सिखा देता, उसने अच्छा भी बता, उसने जुम्मा तो तू नमाज तो तू पढ़ता नहीं, काम कर जुम्मे की नमाज पढ़ने चला जा चड्डी पहन के। कहा तो चड्डी पहन के नमाज, ये तो सारा मसला दिखाने। अरे पूरी बात तो सुन। कहा भाई क्या बात है? कहा लंबा कुर्ता पहन लेना, सजदे में जाना कुर्ता उठा देना सब देख लेंगे। अब जनाब उनको खुशी के मारे बुखार उतर गया उसका। अब जब वो जुम्मे का दिन आया, नमाज पढ़ के आया, खुशी के चेहरा लाल सुर्ख कि बेगम वाह 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 क्या, बस मेरी जो थी तबीयत का तूने इलाज कर दिया और इतना बस खुशी है। तो क्या बात है? कहूं मैं नमाज पढ़ने गया था और जो तुमने तरकीब जैसे बताई, सजदे में मैं कमीज उठा देता था बस। मैंने कहा क्या कह रहे हो, चड्डी तो तुम पहन के नहीं गए थे? तो रियाकार अमल के बाद भी इस अमल की हिफाजत जरूरी है, और रियाकार जलील ही होता है। लोगों को पता चलता है यार ये क्या रियाकारी कर, अल्लाह के लिए नहीं, और अल्लाह के लिए जो अमल होता है वल्ला अल्लाह ताला ने उसमें इज्जत रखी है, लेकिन इज्जत की नीयत ना करें। हाँ, इज्जत की नीयत ना करें, ये नेक अमल है। अल्लाह ताला ने इसमें दुनियावी असर रखे हैं, और सबसे बड़ा जो दुनियावी असर है वो ये कि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी शरीयत और दीन में इज्जत रखी है। मोमिनीन के लिए फरमाया ना वलिल्लाह इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन, इज्जत है अल्लाह ताला ने, इज्जत अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दी है, मोमिनीन के लिए इज्जत है, और रिया में जिल्लत ही है। हर आदमी को पता चलता है यार देखो कैसी तमाशे बातें कर रहा है, और बाकी लोग जो हमनवाई करते हैं ना, हमनवा बनते हैं वो, इसीलिए तो हमनवा बनते हैं, क्यों? माल की वजह से। ये इस किस्म के लोग मन माल ज्यादा खर्च करते हैं, अब हर कोई उनके पीछे पीछे। शायर कहता है जब तक माल था जेब में मेरी, जब तक माल था जेब में मेरी, वो कहती थी मैं हूं तेरी। जब तक माल था जेब में मेरी, वो कहती थी मैं हूं तेरी, माल गया वो ही पराई, अल्लाह मुझे माफ करे। जब माल चला गया अब वो भी सब खत्म तमाशे। ये दुनिया का दस्तूर है भाई, दुनिया वाले माल के पीछे मरते हैं। ये खातून का इस्लाह ताल्लुक है, उसने मुझे खत लिखा के हमें अल्लाह ताला ने अच्छा मकान दिया, बहुत बड़ा भी है अच्छा है। वो उनका शौहर वो कंपनी में काम, वो भी मुझसे बैठ है, वो भी मुरीद है, औरत भी मियां बीवी दोनों का इस्लाही ताल्लुक भी है माशाल्लाह, पाबंदी से खत लिखते हैं। तो उसने सवाल लिखकर भेजा कि अच्छा उसको कंपनी की तरफ से घर मिला है बड़ा अच्छा शानदार बड़ा। कहने लगे जब से घर मिला है तो अब रिश्तेदार वो रिश्तेदार जो हमें पूछते भी नहीं थे, अब वो उनकी तमन्ना है ख्वाहिश है कि हम मिलने के लिए आए। देखा मतलब आपने, देख ये होता है। तो क्या लिखा कि लेकिन अब मुझे तकलीफ होती है उनका आना, मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो हसद भी करते और आना उनका अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूं मेरी रहमानी कीजिए। खैर सही जवाब तो मुझे याद नहीं, मैंने उसको दिया। खुलासा बताता हूं मैं, कहा देखो रिश्तेदारों का हक है, अगर बिल्कुल मिलना छुलना छोड़ दिया तो नतीजा ये होगा कि तकब्बुर पैदा हो जाएगा, और जो आने वाले आने दो, अच्छा है दो बातें सुनाएंगे दिमाग दुरुस्त रहेगा, नजर जो आना चाहे उसको आने से रोको मत, उसको आने से रोको मत, आओ बल्कि खुशी खुशी उनकी मेहमान नवाजी करो, अगरचे तुम्हें तकलीफ हो, क्योंकि मेहमान खुद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। लिहाजा मेहमानों को आने से रोको मत, अपना रास्ता मत खराब करो, अपने दीन को उनकी अखलाक की वजह से अपने दीन को खराब और बर्बाद मत करो। जो आते हैं आने दो, लेकिन जबरदस्ती रिश्तेदारों में घुसो मत, जबरदस्ती मत घुसो, लेकिन आने वालों को मना भी नहीं करो, क्योंकि वो बहरहाल मेहमान।
वो आ गया, वो मेहमान है, उसका इकराम करो, लेकिन रिश्तेदार में ज्यादा घुसो मत और अपने दीन को उनकी खातिर से बर्बाद न करो। तो हद एतदाल जरूरी है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिया और दिखावा इसका कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला अपने काम से हमें इखलास अता करना है और अल्लाह ताला अपने काम से इस्लाह करना है, तरबियत फरमाए, और अल्लाह अपने कर्म से जुमला अखलाक हमीदा सिफात हमीदा हमारी जानों को नसीब फरमाए, और अल्लाह चड्डी खरीदने से हम सबको बचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।